Şetelici. Şetelici. एक सार्थक यात्रा नए क्षेत्र की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
सभी हिंदी प्रेमियों को सादर प्रणाम। क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय और स्वयं मेरी धनराज शंभु की ओर से आप सभी लोगों का हर्ष के साथ स्वागत करता हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से 17वां कार्य आरंभ दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें भाग लेने के लिए विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर एस टंकमणि अम्मा जी केरल भारत से एक कार्यशाला के संचालन के लिए पधारी हुई है, जो रामचरितमानस के बालकांड पर आधारित रही है। हमारे लिए यह हर्ष की बात है कि आज राष्ट्रीय रेडियो MBC के स्टूडियो में उपस्थित हुई है। ऐसी विदुषी से परिचित कराते हुए हमारा सौभाग्य है प्रोफेसर डॉक्टर एस टंकमणि अम्मा जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप भारतीय हिंदी अकादमी तिरुवनंतपुरम भारत की अध्यक्षा है। तो जैसे कि मैंने आपका परिचय देखा, आप परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कुछ अपना परिचय संक्षेप में देने की कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है मुझे मॉरिशस आने का मौका मिला, विश्व हिंदी सचिवालय के 17वें कार्यारंभ दिवस में आने का ये अवसर मिला। वहाँ बालकांड पर, रामचरितमानस पर कुछ बोलने का भी अवसर प्राप्त हुआ। आज यहाँ मॉरिशस वासियों से, मॉरिशस के हिंदी प्रेमियों से कुछ बातें करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वैसे मेरे परिचय में उन्होंने कहा कि मैं भारत से आई हूँ। भारत आप सब जानते हैं, यह मॉरिशस जो है दूसरा भारत ही है। तब तो ये मॉरिशस में आकर मुझे अपने देश का ही अनुभव होता है, कोई दूसरा देश, मैं किसी दूसरे देश में आई हूँ ऐसी कोई प्रतीति मुझे नहीं होती है। वैसे अपने देश का सा अनुभव होता है। यहाँ के लोगों से मिलकर, हिंदी प्रेमियों से मिलकर, हिंदी भाषियों से मिलकर मुझे बहुत बड़े प्रसन्नता हुई। जैसे उन्होंने कहा, परिचय देते हुए कहा कि मैं केरल से आई हूँ। ठीक है, ये तो भारत के सुदूर दक्षिण में ये प्रांत स्थित है, जहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है।
अच्छा,
जैसे कि तब आप सोचेंगे कि मलयालम भाषी होते हुए मैंने क्यों हिंदी सीखी। जैसे मुझे ये कहते हुए खुशी का अनुभव हो रहा है कि सचमुच हिंदी संग मेरी जिंदगी बीती है।
अच्छा,
इसका एक ही कारण है कि मेरे पिताजी हिंदी के, केरल के हिंदी के प्रारंभिक प्रचारकों में एक थे।
अच्छा,
इस कारण घर में हिंदी का वातावरण था। मैं बचपन से ही हिंदी के वातावरण में पली बैठी हूँ। यद्यपि घर में हमारी बोलचाल की भाषा मलयालम है। वैसे एक और बात है, जैसे कि जमाना वही था जबकि गांधी जी आए थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को जोड़ने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए यद्यपि हमारी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, तो भी हमें एक भाषा की ज़रूरत है, एक राष्ट्रभाषा की ज़रूरत है, वह हिंदी ही हो, यही कहा। उसे सुनकर ही मेरे पिताजी हिंदी सीखने वाले हुए। उस समय केरल में हिंदी सीखने की कोई सुविधा नहीं थी, वे बाहर जाकर हिंदी उन्होंने हिंदी सीखी। उस समय गांधी जी ने ये सोचकर कि दक्षिण भारतीयों के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में की, आज के तमिलनाडु में, आज के तब वहाँ जाकर उन्होंने हिंदी सीखी, वहाँ के प्रचारक बने और हमारे केरल आकर हमारे बच्चों को हिंदी सिखाने वाले हुए। वो उस समय हिंदी सिखाने के लिए जो बच्चे आते थे, बहुत चाव से एक दूसरी भाषा पढ़ लेते थे। हिंदी के प्रति हमारे, हम लोगों के प्रेम का एक और कारण है, वह है मलयालम में, मलयालम संस्कृत निष्ठ भाषा है। हिंदी के 80% शब्द संस्कृत के हैं, इस कारण हमें हम आसानी से हिंदी सीख लेते हैं। वैसे हिंदी के पुराने काव्य, नया गद्य, पुराना गद्य सब हम सीख लेते हैं। आगे चलकर तो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी के हिंदी प्रचारकों ने केरल में एक अच्छी नींव डाली हिंदी की, कि स्कूलों में हिंदी का अध्यापन शुरू हो गया, फिर कॉलेजों में हिंदी का अध्यापन शुरू हो गया, और हमारे विश्वविद्यालयों में भी हिंदी का अध्ययन शुरू हुआ। और अब केरल के कई विश्वविद्यालयों में तो स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी सिखाई जाती है, शोध कार्य भी होता है, इस कारण केरल में हिंदी की अच्छी स्थिति आजकल है।
बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपका परिचय पढ़ते हुए मैंने यह पाया कि आप BA, MA और PhD में हिंदी विषय को लेकर कोचिन विश्वविद्यालय केरल भारत से प्राप्त की है उपाधि। फिर मैंने यह भी देखा कि आप सरकारी कॉलेजों में अध्यापन का कार्य करती रही, इसके अलावा केरल में हिंदी विभाग में भी अध्यापन का कार्य करती रही, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी आप काम करते हुए सेवानिवृत्त हुई। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका अनुभव बहुत है, 37 वर्षों का स्नातकोत्तर अध्यापन तथा 25 PhD शोध प्रबंध और 95 MPhil लघु शोध प्रबंधों का निरीक्षण आपने किया है। यह बहुत बड़ी बात है, मॉरिशस में अब तक ऐसा कोई नहीं हुआ है। पूर्व सदस्य विद्या परिषद एवं कार्य परिषद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में भी आप रह चुकी है, वहाँ भी कई पद संभाल चुकी है। इस तरह से हम देखेंगे तो आपका परिचय इतना लंबा है कि बोलते बोलते हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, हमने देखा कि आप बहुत संस्थाओं की ओर से सम्मानित भी हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान साहित्य पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली से, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी कोलकाता से, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से, हिंदी सम्मेलन में भाग लेते हुए विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित सूरीनाम में 2003 में। फिर इसी प्रकार से अनेक संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित हुई है, इससे सिद्ध हो जाता है कि आप हिंदी के प्रति एकदम झुकी हुई है और रुचि लेती है। यह भी देखा गया कि प्रकाशन की दृष्टि से आपने 250 यानी 250 से अधिक कविताओं और लघु कथाओं का अनुवाद तथा मन की बात का भी अनुवाद किया है। इस तरह साहित्य की ओर अगर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में 300 से ज़्यादा शोध पत्र भी आपने प्रकाशित करवाया है। तो इतने सारे कार्य करने के बावजूद मैं सोचता हूँ कि आपका हिंदी का अनुभव जो है, आपका जीवन का जो अनुभव है, शिक्षण का जो अनुभव है, काफ़ी लंबा है। कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
शंभु आनंद जी, आपने मेरी शिक्षा के संबंध में, जैसे कि उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ काम किया, जहाँ जो 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 कार्य किया, जितने ग्रंथों का प्रकाशन किया, जितना पेपर प्रकाशित किया, जितने पुरस्कार मिले, सबके बारे में आपने इतना विस्तृत वर्णन,
मैंने तो कम ही कहा है और भी ज्यादा
नहीं, इतना विस्तृत वर्णन किया है कि मुझे कहने के लिए कुछ बच ही नहीं गया है। मैं ये बताऊंगी, केरल के वातावरण में जबकि हम समझते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी का वैश्विक विस्तार हो रहा है, तब इस परिप्रेक्ष्य में हिंदी को विस्तार देने का काम हमारा है, विश्व के क्षेत्र में, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, और देखिए प्रौद्योगिकी में भी, उसके सहारे, सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जिसे हिंदी में कृत्रिम मेधा कहते हैं, मलयालम में और एक सुंदर शब्द है निर्मित बुद्धि।
अच्छा,
निर्मित बुद्धि, उसके सहारे हम हमारी भाषा हिंदी को भी आगे बढ़ाएं, उसमें परंपरागत ज्ञान विज्ञान को भरने के साथ साथ उसमें नई नई चीज़ों को भी भरें, तभी हिंदी में परिष्कार हो जाएगा, संशोधन। केवल हिंदी साहित्य की भाषा नहीं रहे, वह ज्ञान विज्ञान की भाषा रहे, ज्ञान विज्ञान की समस्त चीज़ों को हम उसमें भर दें और क्षेत्रीयता के मोह को छोड़ दें, और तो एक वैश्विक, जैसे कि हमारा आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा वसुधा ही हमारा कुटुंब है, तब तो उसी दृष्टि से हम अपने को मोड़ दें तो हिंदी का भविष्य उज्ज्वल ही होगा। जैसे कि अपनी भाषा हिंदी के होते हुए और स्कूल और ट्वेल्थ तक, बारहवीं कक्षा तक साइंस की विद्यार्थी होने के बाद भी, के बावजूद भी मैंने अपने मुख्य विषय के रूप में हिंदी ले ली। इसके पीछे मेरे पिता की प्रेरणा तो अवश्य रही, और मेरे एक गुरुवर थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ये डॉक्टर एन चंद्रशेखरन नायर जी, उन्होंने कहा कि आपको हिंदी ही लेनी चाहिए, हिंदी लेने से आपका भी भविष्य बनेगा, केरल में नई पीढ़ी का भी भविष्य बनेगा। इस प्रकार उनकी बातों को शिरोधार्य करके मैंने हिंदी सीख ली, और हिंदी सीखने के तुरंत बाद मुझे नौकरी भी मिल भी गई कॉलेज में, और कॉलेज में मैं इतनी दिलचस्पी के साथ हिंदी पढ़ाती थी, क्योंकि हिंदी अपने हृदय से आती थी, इस कारण विद्यार्थी उसे उसी प्रकार पचा लेते थे। विद्यार्थी हमें जो विद्यार्थियों को जो कविताएं सिखाते, जयशंकर प्रसाद की, पंत की, निराला की कविताएं, अब भी हमारे विद्यार्थी कहते हैं आपकी पंक्तियां अब भी याद है।
हमारे यहाँ भी मॉरिशस के पाठ्यक्रम में पंत प्रसाद, महादेव वर्मा, इन सभी की कविताएँ हम पढ़ाते हैं बैठकाओं में। यहाँ पर मान लिया जाए प्रवेशिका से लेकर उत्तम साहित्य रत्न तक की पढ़ाई होती है, पर ये प्राइवेट रूप से बैठकाओं में पढ़ाई जाती है, लेकिन इनकी परीक्षाएं सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन से होती है, तो इसमें भी बच्चे बड़े ही रुचि के साथ ये इसमें भाग लेते हैं। अच्छा, साथ साथ हम यह देख रहे हैं कि आप जब वैश्विक हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में भी इसी को ध्यान में रखकर हर 10 जनवरी को विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और यह बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, जिसमें पूरे विश्व के लोग ये संगणना की ओर से भाग लेते हैं, इंटरनेट की ओर से भाग लेते हैं। अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे, या आपसे यह पूछना चाहेंगे, आप मॉरिशस वासियों को, मॉरिशस के हिंदी प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं क्या संदेश दूँ? मैं कुछ सीखने के लिए ही यहाँ आई हूँ आप लोगों से। देखिए कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि भारत से आपके मूल वंश यहाँ आए, लेकिन आपने जो काम किया है, हमारे लोग देश में विदेशी होते जा रहे हैं भारत में, लेकिन मैंने यहाँ देखा आपने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा है अपनी वेशभूषा में, संस्कृति में। यहाँ आने के एक दिन पहले यहाँ कावड़ी का दिन था, मैं कावड़ी देखकर मुझे लगा कि मैं केरल में हूँ, मैं भारत में हूँ, ऐसी ही प्रतीति। आपने अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा है।
अभी तो मास के अंत में महाशिवरात्रि मनाएंगे, वो तो यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव
है शिवरात्रि। आप सारे के सारे उत्सव मनाते हैं, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं, अपनी भाषा को सुरक्षित रखते हैं, भाषा के द्वारा आप अपनी संस्कृति को भी इस प्रकार सुरक्षित रखते हैं, तो आपके इस मॉरिशस की भूमि का नमन करती हूँ। ये तो भारत की दूसरा भारत ही है, और आपकी इस भूमि का मैं नमन करती हूँ, और जितने प्रेम के साथ मॉरिशस के लोग ये जानकर कि मैं भी भारत से आई हूँ, मुझे जितने प्रेम के साथ, जितने प्यार के साथ, कितने लगन से के साथ मुझसे लोग मिले, ये तो बड़े अद्भुत बात है। इस सचिवालय में आप मॉरिशस गणतंत्र के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी मुझसे कहा कि आप दूसरी बार यहाँ आ गई हैं, आगे भी आ जाइए। तब तो उनके शब्द सुनकर मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता, क्या मैं तो धन्य हो गई, यही समझिए।
बहुत अच्छी बात है, हमें भी मॉरिशस में आपको पाकर मान लिया जाए हर्ष और उल्लास से हम भर गए हैं, और यही कामना करेंगे कि आप फिर से मॉरिशस आएँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मॉरिशस और भारत में कोई अंतर नहीं। तो श्रोतागण, आज का हमारा समय बहुत जल्दी समाप्त हो गया, यहाँ पर हम कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं। आप हमारी स्टूडियो में आए, आपको तहे दिल से हम आभार प्रकट करते हैं। आपका ठहराव और यात्रा सुखद और सफल हो, हमारी ओर से यही कामना है। अपने तकनीकी सहयोगी अंजू जी को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और आप श्रोताओं से हम विदा ले रहे हैं। प्यार भरा नमस्कार, हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद शंभू आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर।